しか嬉しいです。お勤め में फीस जो है कानों से ली जाती है। हरे कृष्ण। तो आज जो है हम लोग एकादशी के दिन श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से लीलामृत से पाठ करते हैं और उसी के ऊपर समीक्षा करते हैं। तो हम लोग जो है आज लीलामृत से अध्याय जो है उसका नाम है एक मंदिर हो रोहिणी में, एक मंदिर हो चक्र का नाम है। तो इसमें पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा जो मायापुर में मंदिर बन रहा है उसका और सीमेंट की बोलियों का हम लोगों ने सुना कि किस तरह गिर रहे हैं, बहुत लोग उतार रहे हैं। अभी जो है प्रभुपाद जी बताते हैं किस मतलब इसमें प्रभुपाद अपने को काफी दुर्बल अनुभव कर रहे थे। यह उनका विभव दिवस थी, अपराहन थी और वे अपने घर में मुख्य कमरे की चौकी के सामने बैठे थे। वे अपने आसन पर लेट गए और उन्होंने अपना सिर बगल के तकिए के नीचे के ऊपर रख लिया। अगले दिन वे इतने कमजोर लगने लगे कि न चल सकते थे और न खड़े हो सकते थे। उनकी भूख जाती रही और उन्हें 104 डिग्री बुखार हो गया। एक स्थानीय डॉक्टर आया और उसने प्रभुपाद का परीक्षण करके मलेरिया बताया। उसने कुछ औषधियां बताई जिन्हें प्रभुपाद ने एक दो बार लिया फिर लेना बंद कर दिया। फिर दूसरा डॉक्टर आया और उसने कोई और ही औषधियां बताई। प्रभुपाद बोले, इन डॉक्टरों को बुलाना बंद करो, कोई डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर सकता। देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने जीवन में इस अवस्था में जब बीमार रहते थे और आए नए कोई दिन कोई डॉक्टर आते थे तो इस प्रकार के प्रसंग होते थे। कई बार उनको खाने के लिए मना करते थे, कई बार दवाई ज्यादा देते थे। तो प्रभुपाद जी एकदम उनको बोलते थे, भाई मेरे जरफ वाले भगवान हैं तो उनकी दवाइयों को बंद कर देते थे। और कई बार तो कहते थे क्या आने दो, यही दवाई प्रसाद है ना, प्रसाद में भरपेट खा देते थे। तो इस बार देखते हैं कि 104 डिग्री बुखार में भी प्रभुपाद जी मना कर रहे हो, कह रहे बिल्कुल रही डॉक्टर्स को। यह बरसात का मौसम था, अगस्त का महीना, बहुत से भक्त बीमार पड़ गए थे। शुद्ध कीर्ति गुरु जो हाल ही में प्रभुपाद का निजी सेवक बनकर अपने पद पर लौट आए थे मलेरिया से ग्रस्त हो गए थे। तब कुलाद्री जो उद्घाटन समारोह में भाग लेने भारत आया था स्वेच्छा से उसकी मदद करने लगा तो उसे भी मलेरिया हो गया। अन्य भक्त भी मलेरिया पीली और पेशिश और अनेक पाचन संबंधी बीमारियों में जकड़े हुए। देखिए बाहर का एनवायरनमेंट वातावरण उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहा करती थी भक्तों की, जो प्रभुपाद डिसाइपल्स है। लेकिन जब प्रभुपाद के साथ भारत में आए जहाँ पे सारी रीतियों देखने को मिलती हैं और हर तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं तो कई कई जगहों पर तो सूर्य का दर्शन भी नहीं होता इस धरातल पर। एक बार मैं अपने लंदन में थे प्रभुपाद जी तो नर्क का वर्णन कर रहे थे तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद नर्क क्या होता है? कहते यही नर्क है, लंदन ही नर्क है क्योंकि यहाँ सूर्य का दर्शन ही नहीं होते ऐसे जगह दर्शन। तो इस प्रकार जो है भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग सभी ऋतुओं का दर्शन भी करते हैं और हर प्रकार के मौसम का हम लोग आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर बाहर से बेचारे आए भक्तों को कई प्रकार की बीमारी लग जाती थी। यहाँ का पानी, यहाँ का खान पान, यहाँ कई चीज़ों से एनवायरमेंट और सफाई होते नहीं थे और मच्छर भी बहुत तंग करते थे। एक बार तो प्रभुपाद जी मायापुर में बैठे थे तो उनके भक्त भी साथ में थे तो मच्छर काट रहे थे सबको। और अगर आप गए हो मायापुर तो मायापुर के मच्छर आपको पता कैसे होते हैं, काट खाया मायापुर के मच्छर जो काटते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वृद्धि तक खर्च होती रहती है। तो भक्तों को काट रहे थे, भक्तों ने बोला प्रभुपाद जी प्रभुपाद को नहीं काट रहे थे, प्रभुपाद जो है प्योरिटी बोटी है ना, क्योंकि मच्छर आपको नहीं काट रहे हैं। प्रभुपाद कहते लेकिन कलकत्ता के डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कलकत्ता में काट लेते तो ऐसा उन्होंने बोला। तो इस प्रकार जो है मलेरिया हो गया, भक्तों को मच्छरों ने काटा और सब कुछ थे तो सबकी हालत खराब चल रही थी। मौसम जो है घना आच्छादित गर्म और उमस से भरा हुआ था। हजारों तरह के कीड़े मकोड़े दिखाई देते थे। अब हम देखते हैं कि ये बरसातों में सारे कीड़े वगैरह निकल आते तो कभी कभी आकाश कई दिनों तक लगातार बादलों से ढका रहता, तापमान 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता, तब सूर्य निकल आता और असहत ताप से हर चीज को भाप के रूप में ऊपर खींचने लगता। वृंदावन का सबसे अस्वस्थ मौसम था। जब प्रभुपाद की हालत खराब होती गई तो भक्त बहुत उदास हो गए और अपने गुरु महाराज के जीवन के लिए भी उनमें डर उत्पन्न हो गया। प्रभुपाद के भक्तों का, शिष्यों का अपने गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम था कि उनका प्रेम देख सकते कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन समर्पित किया था, मन वाणी कर्म सब प्रभुपाद जी के। और जो ये मूवमेंट हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, इसकी शाखाएं, इसका सारा श्रेय जाता है प्रभुपाद जी को, उनके शिष्यों को। उस समय प्रभुपाद जी कहते थे कि आपको जो है भगवान ने भेजा है मेरी मदद के लिए, अन्यथा भारत जैसे देश में अगर कोई व्यक्ति त्याग दिखाना भी चाहता है तो त्याग होता है घर से झगड़ों के चक्कर में, बच्चे परेशान कर रहे हैं इसलिए, या लोन ज्यादा ले रहे हैं इसलिए। तो ऐसे में व्यक्ति दुखी परेशान होकर घर का त्याग करने के बारे हरिद्वार भाग जाते हैं ना, ऐसा फल वगैरह के दिखाते हैं या फिर सुसाइड इत्यादि कर लेते हैं। लेकिन ये त्याग और ये तपस्या प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जो दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी के प्रति, ये पूरी तरह से भक्ति और ज्ञान से आप्लावित था। उन्होंने स्वेच्छा से अपना जीवन समर्पित किया था प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। और कोई भी व्यक्ति जो इतने अच्छे वातावरण में रहता हो, भारत जैसा जिस प्रकार की सुविधाएं वो वहां लेते हैं, तो भारत जैसी जगह में आने के बाद वो उनके लिए ठीक उस तरह है जैसे कि जेल में आना, अगर एनवायरमेंट की बात करें और सुख सुविधाओं की बात करें। तो ऐसी परिस्थिति में आकर ऊपर से बीमारी लग जाना, कई बार भक्तों के मन में कुछ भी आता था, इतनी बीमारियां लग गई आके मैं जेल में कैसे भक्ति बात तब करूंगा जब जिंदा रहूंगा। तो कई बार कुछ भक्त सोचते भी थे कि हम चले जाते हैं वापस, किसी तरह प्रभुपाद जी को बोलते कि बस हमें छोड़ दिया हम जा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद से असह प्रेम करते थे। प्रभुपाद जी का प्रेम और प्रभुपाद जी का जीवन का जो लक्ष्य था वो सब जानते थे कि प्रभुपाद जी जो है कहीं पर भी, प्रभुपाद जी के जीवन में कहीं पर भी सेल्फिशनेस, ऐसी कोई इंद्रियतृप्ति की भावना या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ कर रहे हो या उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा कोई फील भी नहीं आया। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से प्रभुपाद जी की प्रेम की भावना उनके प्रति, उसने उनको खरीद लिया। तो ये मूल्य था उनका, और उसके चलते वो लोग ऐसे जीवन में, ऐसी जगह पर, ऐसे देश में जहाँ पर उनको बीमारियां भी लग रही है ना, खाना पीना हर चीज बड़ा ही मुश्किल है, रहना मुश्किल, और ऊपर से आक्रमण हो रहा है मच्छरों का, ऐसी परिस्थितियों में कष्ट लगे हुए, बीमार चल रहे, मलेरिया हो रखा है। इतना ही नहीं, अभी कल के प्रसंग में इंजेक्शन लेक्चर बता रहे थे कि मायापुर में तो अटैक कर दिया लोगों ने, पहले 50 लोगों ने अटैक करा वहां के मुस्लिम लोगों ने, फिर 300 लोग आ गए और मारने पीटने लगे, तो कितना संघर्ष किया भक्तों ने। और फिर भक्त के पास बंदूक थी तो उसने हवा में फायर किया, घायल किया। तो मतलब इस प्रकार जो है उनको संघर्ष सहना पड़ा है, हमें कोई ऐसा कुछ संघर्ष में सहना नहीं पड़ा। मतलब हम लोग तो जहाँ जाते हैं सब लोग हाथ मिलाए बोलते हैं कि आइए बैठिए स्वागत है आपका, और हम लोगों को बड़ा सम्मान देते हैं, फिर पुस्तकें भी लेते हैं, डोनेशन भी लेकर आते हैं, गीता भी करते हैं। यहाँ पर का वातावरण तो वो हो गया, लेकिन उन लोगों ने जो संघर्ष, कम्युनिस्ट कंट्री जैसे रशिया जैसे जगह जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का धर्म का पालन करना नहीं मतलब पाप था, सरकार उसको अंदर कर देती थी, ऐसे अवस्था में प्रभुपाद जी ने एक ही व्यक्ति को 3 दिनों और 3 रातें कमरे में बैठा कर खूब लेक्चर दिए, और वो व्यक्ति बाद में प्रभुपाद जी के जाने के बाद पूरे रशिया में, जो आज पूरे विश्व में रशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा केंद्र है और सबसे ज्यादा समर्पित भक्तों की संख्या है और सबसे ज्यादा अच्छे भक्त वहाँ पाए जाते हैं। बस क्या था कि एक भक्त को 3 दिन और 3 रातों के लिए बढ़िया लेक्चर दिया, बढ़िया उसको उसकी गंदगी हटाई उसके ब्रेन से, और उसको भक्त बनाया और उसने जो है कमाल कर दिया। तो ऐसे समर्पित भक्तों ने अपना जीवन समर्पित किया प्रभुपाद जी के लिए और हर प्रकार के कष्टों को सहने के लिए तैयार हो गए। कई बार ऐसे कष्ट अगर हमें आते हैं तो भक्त लोग सोचते हैं कि यार मैं कहीं गलत जगह नहीं आ गया, ऐसे कोई और बेहतर जगह है क्या, है तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। कुछ किसी को कुछ कमी मिल जाए, खाने में कमी या कुछ कपड़ों में कमी या रहने में कमी या मंदिर आते हुए कुछ मैनेजमेंट में कुछ कमी दी जाए, है ना, और कोई भक्तों का बस बिगड़ते हुए देख लिया या किसी ने उसकी निंदा कर दी, इन्हीं सब चीज़ों से लोग परेशान रहते हैं और कई बार छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोग अपने समर्पण के लिए या हम अपने प्रेम की बात करने की या तुलना करने की कोशिश करें इन भक्तों से तो हम कहीं नहीं पाएंगे। जब इसी चीज को जमीन आसमान का अंतर है तो ये भक्त लोग जो है प्रभुपाद जी के लिए सारे कष्टों को सह रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने बोला चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अभी कोई बोलेगा कि वो कहेगा हमने चैंटिंग शुरू किया और हमको भारत में लाके मच्छरों से कटवा दिया, उनके लिए कहाँ हैप्पी लग रहा है, सब उनके लिए तो बड़ा दर्दनाक स्थिति है, हर तरह की बीमारी लग रही है, ऊपर से लोगों का आक्रमण हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों को चलते हुए वो भक्त ये जानते थे उनका समर्पण उनका त्याग उनका कष्ट ज्ञान में था, प्रभुपाद जी के लिए था, कृष्ण के लिए था, इसलिए वो हर चीज में सहन था और उनका वो सहन कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु के प्रति जो समर्पण था प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था। और गुरु अगर प्रसन्न है जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद ग्रंथ बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करता है तो कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं इसको चिंता करने की जरूरत नहीं, कृष्ण 100% प्रसन्न होंगे। तो इसलिए भक्त लोग सारे कष्टों को सहने के लिए तैयार थे। तो बता रहे कि वे प्रभुपाद की तबीयत को खराब देख, अच्छा देखिए ये लोग घर छोड़कर आए थे सारे, उनके खुद के भी माता पिता कभी रहे हों कोई ना कोई, अब उनको उनकी चिंता नहीं है, अब उनके आध्यात्मिक जो पिता हैं गुरु हैं श्री प्रभुपाद जी उनको कष्ट में देख उनको भी कष्ट हो रहा है। और क्या कर रहे देखिए अभी तो भक्तों भी उदास हो गए और अपने गुरु महाराज के जीवन के लिए भी उनके अंदर डर उन्होंने कहा अगर प्रभुपाद चले गए तो वे प्रभुपाद का बिस्तर मकान के बाहर उनके छोटे से बरामदे में निकाल लाए, वहां कुछ ठंडा था, उनके सेवक उनकी मालिश करते थे और पंखा झेलते थे। कई दिन बीत गए लेकिन प्रभुपाद ने कुछ अंगूर और संतरे की कुछ फांकों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया। उन्होंने बताया प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु इसी तरह कुछ ना खाने से हुई थी। सुशील बता रहे हैं प्रभुपाद की ऐसी टिप्पणी से उनके शिष्य और भी डर गए क्योंकि प्रभुपाद जी कुछ नहीं ले रहे थे, बीमार थे और केवल कुछ अंगूर और संतरे खाए थे और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी भी जो है इस प्रकार कुछ ना खाने की वजह से उन्होंने शरीर त्यागा था। तो अब क्या किया भक्त लोग डर गए और वे गोस्वामियों की समाधियों पर प्रार्थना करने जाने लगे। देखिए प्रेम देखिए कि वो प्रभुपाद जी के हेल्थ के लिए अब गोस्वामियों की शरण में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए ताकि उनके गुरु महाराज अच्छे हो जाए। इन सब क्रियाओं से उन भक्तों का प्रभुपाद जी के प्रति जो प्रेम है वो झलकता है, जो भक्ति है उनकी गुरु के प्रति वो झलकती है। एक दिन हरिकेश ने पूरी रात प्रभुपाद के कमरे के निकट जाग कर काटा और वह मंद स्वर में लगातार हरे कृष्ण कीर्तन करता रहा। प्रभुपाद को यह पसंद आया, उन्होंने कहा यही कीर्तन सचमुच हमें जीवन देता है। इसके बाद भक्तों ने बारी बांध ली, कि किसका टर्न कैसे आएगा, जिससे वह कीर्तन लगातार चलता रहा। तो प्रभुपाद ने जैसे बोला कि मेरे को हमको इससे जीवन प्राप्त हो रहा है, प्रभुपाद को अच्छा लगा। और एक भक्त ने देखिए, हर व्यक्ति को अपनी नींद बहुत प्यारी रहती है, लेकिन गुरु की सेवा के लिए गुरु ने कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति कमरे के बाहर पूरा रात जागकर प्रभुपाद जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी को ये पता चला कि प्रभुपाद जी प्रसन्न भी हुए, और जैसे ही प्रसन्न हुए तो सब भक्तों को लगा कि हमें भी प्रसन्न करना है प्रभुपाद को, ये सेवा हम भी करें। तो क्या किया, सबने बारी मांगी। प्रभुपाद ने बताया कि उनकी बीमारी, अब प्रभुपाद जी रीजन बता रहे हैं, प्रभुपाद ने बताया कि उनकी बीमारी स्थान के नेताओं के पापों के कारण है, जिनमें से 80% कड़ाई से विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने इस संस्था को बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को पूरा करने के लिए जा रहे, देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और सबको भगवान का आदेश देना है, सबको भक्त बनाना है। तो इस संदर्भ में प्रभुपाद ने क्या किया, हजारों लोगों को इनिशिएट किया, दीक्षित किया। उनसे पूछते थे प्रभुपाद कि नाम बताओ, कृष्ण कौन है, मतलब भगवान कौन है, तो बोलते थे कृष्ण, कहते तुम कौन हो, कहते मैं आत्मा। प्रभुपाद कहते इसको दो चीजें मालूम है, इसको ये मालूम है कि मैं कौन हूँ, इससे ये मालूम है कि भगवान कौन है, तो इसको ये लायक है दीक्षा के। तो प्रभुपाद दीक्षा दी, ऐसे नहीं, फिर योग्यता आगे भी थी कि चार नियमों का पालन करना और 16 माला का जप करना, इसके अलावा सतोगुण के लिए में उठने के लिए व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगला इत्यादि करना। तो इस प्रकार के नियम बताए थे। तो बहुत से भक्तों ने करना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हुआ तो छूट गया। तो प्रभुपाद बता के इस काम के नेता लोग, नेता बोले तो जो लोग के हाथ में कुछ मैनेजमेंट भी था, जबकि वो चीज थी। तो इस तरह के लोगों के द्वारा शायद अब नियम पालन नहीं हो रहे थे। तो प्रभुपाद ने रीजन बताया मेरी बीमारी का, प्रभुपाद ने कहा कि मेरी बीमारी का रीजन क्या है, इस काम के कुछ नेता के पाप है उसके कारण, है ना, क्योंकि वो विधि विधानों का सत्य से पालन नहीं है। इसलिए जो खास करके सभी भक्तों को, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, चाहे बीच में हो चाहे नेता हो, सबको चाहिए कि वो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए चार नियमों का सत्य से पालन करें और विधि विधानों का सारा सत्य से पालन करें और सुबह जल्दी उठे, है ना। अगर देख सकते हैं, अगर फाइनल लेसन देखेंगे तो प्रभुपाद जी वृंदावन में बिस्तर पे लेटे हैं और श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंध के 14 अध्याय का श्लोक का पर पढ़ते हैं। उसमें भी प्रभुपाद जी डिक्टाफोन पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें भी सभी भक्तों से एक ही बात कह रहे हैं, क्या, कि सबको चाहिए कि वो सतोगुण पर उठे, सतोगुण में आए। सतोगुण का मतलब क्या है, ये वो गुण है जो प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, सुख देता है, और यहाँ से सतोगुण से व्यक्ति जो है भगवान को बहुत आसानी से समझ सकता है, इस ज्ञान को अपने अंदर ले सकता है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सबको सतोगुण तक उठना चाहिए। सतोगुण का मतलब है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने खाने पीने को, अपने संग को कथा श्रवण इत्यादि में लगाए और सुबह जल्दी उठे 4 बजे से पहले, 4 बजे। तो उसके बाद अपनी सारी साधनाओं सब कुछ कर सकता है। वृंदावन में भी कुछ भक्त नियम पूर्वक 4 बजे सवेरे नहीं उठ रहे थे। अब कुछ भक्त जो प्रभुपाद जी के साथ थे वृंदावन में, वो भी ठीक ढंग से नहीं उठ पा रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत कम बोल सकते थे, अपनी बीमारी के। इस कारण की बात उन्होंने केवल संक्षेप में ही कही थी, किंतु संक्षिप्त होते हुए भी उनके भक्त, उसने भक्तों पर वज्रपात किया, थंडरबोल्ट की तरह जो है, जो भक्तों को जो सुनाई दिया कि ये भक्तों की विधि विधानों में गलती के कारण हो रहा है, रूपा जी की बीमारी, जिनके प्रति उतनी कंसर्न है, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर रहकर सारी तबीयत भी खराब हो रही, बट स्टिल रूपा जी के प्रेम लेके यहाँ पर है। लेकिन रूपा जी ने कारण क्या बता दिया कि उनमें से कुछ ऐसे भक्त हैं जो विधि विधानों में ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, उनके कारण श्री रूपा जी की तबीयत खराब है। ये सुनने के बाद उनको बड़ा दुख लगा और फिर लगा कि दोषी कौन है, इसे तो अपने बारे में हर भक्त ही अलग अलग बता सकता है, हर व्यक्ति जानता है कि मैं कितना दोषी हूं। किंतु वो भगवान हमने क्या किया है का भाव सब में समान रूप से व्याप्त था और वृंदावन में सभी भक्त विधि विधानों के पालन में तुरंत सावधान हो गए और सब भक्त सावधान हो गए, सब लोगों ने भी साधना छीकर। ये जो है विधि विधानों का पालन और साधना इत्यादि, ये व्यक्ति के स्वयं हृदय से होना चाहिए, द्वंद्वता नहीं दिखाई देनी चाहिए किसी के आचरण में। अगर कोई व्यक्ति सच में भक्ति का मार्ग, भक्ति के मार्ग को अपना रहा है, तो उसको चाहिए कि वो ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे। जैसे यहाँ पर जैसे ही रूपा जी ने इंगित किया तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो भक्तों ने कहा कौन दोषी है, ये सब हम ही जानते हैं कि हम दोषी हैं, तो अगर हम दोषी हैं तो उस दोष को ठीक करें। किसी प्रकार के कठिनाई कठोर नियम से या किसी को यातना देकर या पनिशमेंट देकर किसी से कुछ समय तक तो साधना ठीक कराई जा सकती है डर से, लेकिन ये आउट ऑफ फियर नहीं होना चाहिए, ये प्रेमवश होना चाहिए, ये आउट ऑफ ड्यूटी होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं मंदिर में रह रहा हूँ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहते थे कि ये लेजी एंड क्रेजी के लिए जगह नहीं है मंदिर, तो अगर मैं मंदिर में रह रहा हूँ तो मुझे इसके विधि विधानों का मठ में रहने का तभी अधिकार है जब मैं इसके सारे विधि विधानों का पालन करूँ। भक्तों ने भी ऐसे करना है और स्वतः ही हृदय से इच्छा करी कि मैं जो हूँ अपनी साधना अच्छी करूँगा, इसको बोलते हैं ईमानदार। जिसकी साधना या जिसका चरित्र इन सब चीजों से ठीक नहीं है, वो ये देखता है कि नहीं मैं तो बच गया, मुझे पता नहीं मुझे कौन देख रहा है, गुरु जी तो दूर है, उनको कैसे पता चलेगा, तो इससे क्या कर रहा है वो अपनी ही साधना में अपने ही हरि नाम में वो से क्या लगा रहा है ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान जानते हैं हर चीज को। ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब यह है कि अब तो पूरी छूट मिल गई। भक्ति का इतना बड़ा मार्ग है और उस मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि देखिए जो कोई बहुत बड़ा चोर होता है तो उसके पहले ऐसा नहीं कि उसने एकदम से चोर बन गया, बोलना उसने ट्रेनिंग किया होता है, कई बार उसने छोटी छोटी चोरियां की होती, जब नहीं पकड़ा गया होता तो फिर उसका धीरे धीरे असर पड़ता है। उसी तरह अगर हम लोग विधि विधानों के पालन में कहीं कहीं त्रुटियां कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी त्रुटियां, छोटी छोटी हमारी ईमानदारियों को नहीं तो बेईमानियां एक बड़े हादसे की तरफ ले जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए भक्ति में कोई अगर सिंसियर है तो उसकी सिंसियरिटी, उसकी सीरियसनेस पता चलती है उसकी सिंप्लिसिटी से, उसकी ईमानदारी से, कि वो कितना ईमानदार है अपनी साधना के लिए, अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, और कितना वो दृढ़ता से उन सब सेवाओं को कर रहा है जो उसको दी जा रही है या जो उनसे कही जा रही है। ये बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है भक्ति को शुरुआत करने की। अगर किसी की यहीं पर कमियां चल रही हैं और उसके बाद बाहरी तौर से देखने में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इन सब चीजों का असर जप पे पड़ेगा, उसका और चीजों को पालन करने के विधि विधानों में पड़ेगा उसका असर। फिर चाहे वो जप करते हुए एक्सटर्नली दिखाए कि he is doing, he is putting his 100% सारे मंत्र भी कान में जा रहे हैं ऐसा लगता है देखने से, लेकिन फिर भी जो जिस तेजी से उसकी उन्नति होनी चाहिए, उसकी चेतना के अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए, उसका एडवांसमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं क्या रहेगा, दोष रहेगा, एफर्ट्स पूरे लगाए जाएंगे, क्योंकि उसको लगता है कि इससे सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसके अलावा जो और गतिविधियां जो पूरे दिन की हैं, हमारी सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमराम, नहीं फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं जब इन सेवाओं को करता हूँ क्योंकि मेरी मन पसंद है तो मैं बहुत अच्छी लगती है, तो आप मुझे इससे पहचानो ना, उनको क्यों देख रहे हो जो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, तो मैं नहीं करता, मेरी मतलब मैं मंगला आरती मेरी अच्छी है, मंगला आरती करता हूँ, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी चीज मैं नहीं करता, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो हर व्यक्ति जो है हर समय क्या रहे, एक सोल्जर जैसे होते हैं ना, हमेशा अटेंटिव, अगर लड़ाई नहीं भी हो रही तो उनको बंदूक पकड़ा के भगाते रहते हैं जंगल में, उनको बोलेंगे अपने संदूक से सामान निकालो फिर डालो, भागो बक्सा लेके भागो, कुछ ना कुछ करो, यहाँ सफाई करो, आप अभी जाओगे इस कैंट साइड से तो देखोगे सब भाग रहे हैं, है ना, या फिर देखोगे उनके हाथ में बड़ी बड़ी तलवार टाइप क्या बोलते हैं जिससे घास काटते, तो आसपास की घास काट रहे हैं ना, खाली नहीं बैठने देते, क्योंकि अगर ये खाली बैठ गया इसको जंग लग गया तो जब हम उसको बोलेंगे भैया बंदूक उठा तो कहते मेरी बंदूक कहाँ है, अगर बंदूक मिल भी गई तो कहते वो सफाई तो की नहीं थी, गोली निकल ही नहीं, उल्टी निकल आई, आगे गंद ज्यादा है ना। तो युद्ध के समय जब माया का अटैक होगा भक्त के ऊपर तो बंदूक ही ढूंढता रहेगा, अपनी माला की थैली ढूंढता रहेगा, कहाँ पड़ी है मेरी गंदी सी माला जो मैंने कई दिन से धोई थी। तो हर चीज में दिखाई देना चाहिए सिंसियरिटी, और हर व्यक्ति को हर समय भक्त को सजग रहना चाहिए। माया का अटैक तो हर समय हो रहा है, हर क्षण हो रहा है अटैक, तो क्या बोलते हैं माया भी रहते हैं। तो जो लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं उनको लगता है हाँ ये अटैक था, ये अटैक था, तो उन अटैक से उन आक्रमणों से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि हर समय हर एक्टिविटी हर क्रिया को पूरी सावधानी से करें। इसलिए नहीं कि भैया किसी ने देखा नहीं बच गए, ऐसा नहीं कि वो मुझे बोल नहीं रहा तो नहीं करूंगा, है ना, कुछ से कोई गलती हो जाए या कुछ छूट जाए या किसी सेवा को नहीं कर पाए तो उसकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि उसको एक्सेप्ट करे कि मेरे नहीं हुआ, उसके लिए रिपेंटेंस, उसके लिए पश्चाताप करे कि मैं नहीं कर पाया, उसके बाद उस कंसर्न अथॉरिटी के पास जाकर उनसे बोले कि मैं ये नहीं कर रहा, मुझे क्षमा करें, मुझे सजा दें, और उसके बाद जो सजा दे उसको करना चाहिए, यह रिपेंटेंस। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी साधना की जो दीवार है जो हमने उन्होंने खड़ी करी है माया के आगे, जो उस बांध बनाया है जो, अगर उसमें छेद ही छेद रहेंगे तो आप बच नहीं सकते। अगर छेद छोटा है तो ठीक है, आपने ग्लू टैग लगा के उसको बंद कर दिया या एमसील लगा के, ग्लू टैग बंद लगाते हैं एमसील लगा के, है ना, एक छेद छोटा हो रहा वहां पे लगा लिया, लेकिन अगर पानी का प्रेशर तेज है और धीरे धीरे हमारी गलतियां ज्यादा हो रही है हर चीज में तो छेदों का जो साइज बढ़ जाएगा, या फिर कई और गलतियां की जा रही है ऑफेंसेज हो रहे हैं तो दूसरी जगह से शुरू हो जाएगा पानी, तो कितने छेद बचाओ, एक ना एक दिन तो ना डूब लिए। तो इस प्रकार भक्त को बहुत ही ईमानदार रहना चाहिए अपनी हर क्रिया में, हर डिवोशन सर्विस और हर साधना के हर उस प्रसंग में। तो यहाँ पर भक्तों ने अपने को ही दोषी पाया कि हम ही दोषी हैं आज प्रभुपाद जी की इस हालत के लिए। तो हर शिष्य को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं भी कुछ गड़बड़ करूंगा या मेरे से भी कोई नियम टूटेगा या मैं भी अगर साधना में छिद्र रखता हूँ तो उसका दोष किसे लगेगा, मुझे लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका नुकसान उसके गुरु को पहुंचेगा। और यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु को कष्ट देने से भगवान। भगवान को उत्तर देता है तो उसका भी अपराध नहीं लगेगा। तो हर वक्त को चाहिए वो इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्मरीक्षण करे, तब देखे कि वो कहां गलतियां कर रहा है, उसको ठीक करने का प्रयास करे। सवेरे की भागवत कक्षा में जो भक्त व्याख्यान देते थे वे प्रभुपाद की पुस्तकों में बताए गए विषय को भलीभांति समझा कर बताते थे। दीक्षा के समय कृष्ण भक्त के सभी विगत पाप कर्मों के फल से उसे मुक्त कर देते हैं, किंतु भक्त के गुरु महाराज कृष्ण का प्रतिनिधि होने के नाते उनके कर्मों के निराकरण में भी भागी होते हैं। कृष्ण अनंत है इसलिए इन कर्मों से कभी प्रभावित नहीं होते, जबकि आध्यात्मिक गुरु पूर्णतः शुद्ध होने पर भी सीमित हैं। अतः आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के दोषपूर्ण कर्मों के प्रतिफल में आंशिक रूप से भागी होता है और कभी कभी बीमार हो जाता है। जीव गोस्वामी आगाह करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को बहुत अधिक संख्या में शिष्य नहीं स्वीकार करने चाहिए, इसमें उस पर कर्म के अत्यधिक भार का जोखिम है। अध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के न केवल विगत कर्मों को स्वीकार करता है, वरन यदि दीक्षा के बाद शिष्य पाप कर्म करता है तो उसके कारण भी वह कभी कभी बीमार पड़ सकता है। रूपाद ने कहा कि उनका दुष्कर्म यह था कि उन्होंने बहुत सारे शिष्य स्वीकार किए थे, किंतु कृष्ण भावनावृत के प्रसार के लिए यह अनिवार्य था। तो जी को समझे बता रहे कि किसी गुरु को बहुत शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शिष्यों का द्वारा किए गए कर्मों को भी गुरु को आंशिक रूप से लेना पड़ता है या बीमार होना पड़ता है। रूपा जी कह रहे मेरा जो है ये दोष है, मैंने बहुत से शिष्य स्वीकार कर लिए, लेकिन रूपा जी तर्क दे रहे हैं कि मुझे क्योंकि क्या करना है, इस हरे कृष्णा मूवमेंट को फैलाना है, मुझे भक्तों की आवश्यकता है, इसलिए रूपा जी ने उन कष्टों को बीमारी को या अपने दोष को भी कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने किसके लिए है ताकि समाज में कृष्ण भक्ति फैल सके। इससे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के चरणों में चलते हुए उनके शिष्य भी जिनकी कोई योग्यता भी नहीं है, जो बहुत अगर प्रभुपाद जी के शिष्यों से अपने को कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो भी गुरुजन कृपा वश हम लोगों को स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी प्रभुपाद जी के शिष्यों की तरह सीरियस हों, उनकी सेवा करें। हमारे पाप कर्मों के लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु दुख भोग रहे हैं और उनका भविष्य में पाप कर्म करने वालों पर हमेशा अच्छा असर होता है, लेकिन अब पहली बार प्रभुपाद अपनी गंभीर बीमारी के लिए विशेष रूप से अपने शिष्यों को दोष दे रहे थे। शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के मूलभूत आदेशों की अवहेला करके उन्हें गहरा कष्ट पहुंचा रहे थे। शिष्य समझ रहे थे कि उनके गुरु महाराज मामूली मलेरिया के रोगी नहीं थे और वे यह भी जानते थे कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना है और कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि प्रभुपाद शीघ्र स्वस्थ हो जाए। प्रभुपाद की हालत इतनी गंभीर थी और उनके व्यक्तित्व का निहितार्थ इतना व्यापक था कि उनके सचिव ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि सबसे अच्छा यह होगा कि पूरे कृष्ण भावना संघ के लोगों को इसकी सूचना दे दी जाए, ताकि प्रभुपाद को 24 घंटे के कीर्तन से प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने सोचा कि यह कार्यक्रम संसार में स्थान के सभी मंदिरों में आरम्भ कर दिया जाए। कुछ तार भेजे गए और यह समाचार चारों ओर शीघ्र फैल गया कि प्रत्येक मंदिर में निरंतर कीर्तन किया जाए और प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए कृष्ण से प्रार्थना की जाए। तो भक्तों ने जो है बुद्धि लगाई और ये तो हर मंदिर में होना चाहिए अगर प्रभुपाद जी को इससे प्रसन्नता हो रही है। तो भक्तों को भी चाहिए जब उनके गुरुजन इस प्रकार किसी संकट में होते हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो हम लोगों को अधिक से अधिक कीर्तन, अधिक से अधिक जप, अधिक से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरुजनों के लिए, ठीक है ना। ये कारण और भी है कि इससे भक्त गुरु के प्रति और समर्पित होता है या उनका प्रेम गुरु के प्रति और बढ़ता है, तो ये कारण भी है। गुरु की तरह स्थिति में और उसके भविष्य में पाप करने वालों में हमेशा अच्छा से कुछ वरिष्ठ शिष्यों को 1967 ईस्वी की याद आ गई जब वे रात भर जगकर प्रभुपाद के दिल का दौरा जैसी लगने वाली बीमारी से अच्छा होने के लिए कीर्तन करते थे। उस समय प्रभुपाद ने उन्हें प्रोत्साहित किया था कि भगवान नरसिंह की एक स्तुति गाएं और उनसे प्रार्थना करें। मेरे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपया करके उन्हें बचा लें। प्रभुपाद ने खुद विशिष्ट बोलते नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो और ये कहो कि हमारे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए बचा लें। प्रभुपाद ने कहा था कि उनके शिष्यों की सच्ची प्रार्थना के कारण कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। 1967 की बात है। जब 1974 ईस्वी में और 1987 के अपेक्षा शिष्यों की संख्या अधिक हुई थी और वे सभी प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, किंतु अब जैसा कि प्रभुपाद कह चुके थे ऐसे भक्तों की संख्या अधिक थी जो अपने अनुचित व्यवहार से उन्हें कष्ट पहुंचा रहे थे। उनका वह संदेश मेरे शिष्यों के नेताओं में से 80% विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि मैं बीमार हूं, तार द्वारा प्रसारित किया गया था। वह बहुत अधिक बीमार, वह बहुत अधिक भारी था। तो लेटर में लिख दिया प्रभुपाद का स्टेटमेंट और सारे मंत्रों में भेज दिया। प्रभुपाद वृंदावन एक समारोह के लिए आए थे, इस तरह का स्टेटमेंट में से लगना चाहिए। प्रभुपाद वृंदावन एक समारोह के लिए आए थे पर कोई समारोह ना हो सका। अब वे बहुत बीमार थे और उनका सेवक उन्हें अपनी बाहों में उठाकर शौचालय आदि ले जाता था। प्रभुपाद जी के विषय पर ऐसा कार्य कर रहे हैं। आजकल तो ऐसी स्थिति रहनी है कि कोई अपने सगे पिता को और जो फादर उनको भी कोई ऐसा करेगा बड़ी मुश्किल होती है देखने में सर, लेकिन अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनको शौचालय उठा के ले जा रहे हैं, शौचालय से ला रहे हैं प्रभुपाद जी। अन्य भक्त बड़ी निष्ठा से उनकी मालिश और सेवा कर रहे थे, उनके लिए कीर्तन निरंतर चल रहा था। इस बीच वे केवल कृष्ण पर निर्भर थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे अच्छे हो जाएं और अपने कार्य में लग जाएं। जिस अवस्था में प्रभुपाद थे उसे वे कृष्ण की कृपा समझकर झेल रहे थे। उसी बीच समाचार आए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनसे मिलने आ रहे हैं। राज्यपाल अकबर अली खान एक मुसलमान थे और उस क्षेत्र की यात्रा पर थे। शेख बिशन चंद ने जो राज्यपाल और प्रभुपाद दोनों के मित्र थे संस्तुति की थी कि राज्यपाल मंदिर देखने जाएं। प्रभुपाद ने सोचा कि शायद राज्यपाल भक्तों की सहायता के लिए राजी हो जाए और कम से कम स्टील और सीमेंट का परमिट सरकार से दिलाने जैसे मामलों में, इसलिए अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भी प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्त प्रांगण में राज्यपाल का स्वागत करें। तो इस प्रकार जब राज्यपाल आया तो प्रभुपाद कितनी बीमारी की अवस्था में भी बाहर गए और उन्होंने कुर्सियां लगवा दी और खुद उठकर गए, कुर्सी में बैठ गए। जब राज्यपाल आया तो उससे हाथ मिलाया, उससे सब बातचीत करी और अपनी बातें रखी उनके आगे सीमेंट और स्टील की और काफी देर उनके साथ बैठे। उसके जब वो गए तो प्रभुपाद एकदम शक्ति दिखाई थी, एकदम एनर्जी दिखाई थी उनके साथ, मतलब जो व्यक्ति लेटा हुआ उसको अचानक खड़ा होना पड़ जाए काफी लंबी बीमारी से। तो प्रभुपाद ने पूरी जो है दिखाया कि जैसे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उनसे पूरी तरह बात करी। तो और जैसे राज्यपाल गए दो हफ्ते तक प्रभुपाद को चल रहा था और उसके बाद प्रभुपाद जाने के बाद बता रहे हैं इस समय में 20 मिनट बोले राज्यपाल शालीनता के साथ सुनते रहे। उनके साथ प्रभुपाद ने राज्यपाल के साथ लगभग 15 मंत्रियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। राज्यपाल के चले जाने के बाद भक्त प्रभुपाद को उठाकर उनके कमरे में वापस ले गए जहां वे बेहोश हो गए। उन्हें 105 डिग्री बुखार था। राजनीतिक अतिथियों और सैनिक रक्षकों के जाने के बाद मंदिर स्थली फिर सामान्य क्षण छा गई और प्रभात के पलंग के पास बैठकर भक्तों ने मंद मंद कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभात की शक्ति और संकल्प पर विस्मित भक्त अनुभव करने लगे कि कृष्ण भावनामृत में भक्तों का स्वयं का योगदान वास्तव में कितना कम था। पूरे दो सप्ताह के बाद प्रभात का ज्वर अंत में उतर गया। एक कठिन परीक्षा का अब अंत हो गया। प्रसाद खत्म हो रही थी कि मंदिर निर्माण की पुरानी समस्या बनी रही और वैसे ही दृढ़ प्रभात की इच्छा शक्ति थी। उनके शिष्य भी दृढ़ संकल्प थे कि वे सरकार की लाल फीताशाही और मजदूरों की ढिलाई पर विजय पा लेंगे। अब आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। प्रभात ने अपनी बीमारी के बारे में बात करना बंद कर दिया और संसार में सभी भक्तों को उनके स्वास्थ्य में सुधार के बारे में बता दिया गया। अब उन्हें आपातकालीन कीर्तन बंद करने और अपने नित्य कार्यों में लग जाने का को कह दिया गया। प्रभात ने भी मंदिर निर्माण के समस्त के संबंध में अपना नित्य का कार्य आरंभ कर दिया। जो भी हो, एक बात स्पष्ट थी, प्रभात पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक थे और उनके साथ कार्य करने वाले भक्त एक आध्यात्मिक अनुबंध में आबद्ध थे। ऐसे अनुबंध में जो प्रेम और विश्वास पर आधारित था, वे उनका कर्म स्वीकार कर रहे थे और भक्त उनके आदेश पालन के लिए वचनबद्ध थे। अब उनकी विफलताओं से जनित निराशा के बावजूद वह अनुबंध अपनी जगह पर स्थित था। यदि वे उन्हें अपने अहित की कृपा देते रहेंगे तो भक्त उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे, अन्यथा वे बिना आध्यात्मिक शक्ति के रह जाएंगे। प्रभात के लिए कृपा न देते रहने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं था। जब अपने भक्तों के कारण उन्हें बीमारी झेलनी पड़ी थी, तब भी उनको त्याग देने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया। दो सप्ताह से अधिक समय तक अनुवाद कार्य न करने के कारण प्रभात ने उसे फिर से शुरू कर दिया। वे चैतन्य चरितामृत पर तेजी से कार्य कर रहे थे और वहां पहुंचे थे जहां दलीला में भगवान श्री चैतन्य और सनातन गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हो रहा था। सवेरे जल्दी उठकर प्रभुपाद ने उसी स्थान से पुनः आरंभ किया जहां छोड़ा था। उन्होंने बंगाली अनुवादों और व्याख्यानों का अनुशीलन किया, फिर स्वयं लिखित यंत्र को चलाकर वे उसमें बोलने लगे। उनकी आवाज कमजोर थी, रूखी थी, फुसफुसाहट भरी थी, किंतु ज्यों-ज्यों वे बोलते गए उनकी आवाज में जान आती गई और एक घंटे में वे अपनी सामान्य आवाज में बोलने लगे। जिस समय उन्होंने वृंदावन से प्रस्थान किया, वे असाधारण तेजी से कार्य कर रहे थे और एक दिन में दो टेप तैयार कर लेते थे। इतनी बीमारी होने के बाद भी प्रभुपाद जी ने अपने कार्य को नहीं रोका। फिर से रात को जल्दी उठकर और पुस्तकों का चैतन्य चरितामृत बताने मध्य लीला, तो प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है, प्रभुपाद ने कितनी हृदय से इनको लिखे, कितनी मेहनत करी इनको लिखने में, और कहते थे कि ये सब जो परपट्स हैं ये मैंने नहीं लिखे, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने डिक्टेट किए तो मैंने लिखे। और आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुपाद के इन्हीं ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो इनको पढ़कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ जब मेरे घर लोग मेरी पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रभुपाद जी के जीवन से हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार प्रभुपाद ने जो त्याग है, एक आदर्श है, एक आचार्य की जो गतिविधि है, किस तरह प्रदर्शित की, भक्तों के साथ प्रेम किस प्रकार रखा और भक्त भी एक ऐसा आदर्श पेश कर रहे हैं जिससे कि एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, कितना समर्पित होना चाहिए, किस तरह सेवा करनी चाहिए गुरु की, तो हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम लोग उसको यहीं पर विराम देंगे, अगले बार यहीं से आगे और बहुत पढ़ेंगे एकादशी में। आप सबका धन्यवाद। आप हफ्ते हफ्ते मतलब हर एकादशी में सुनते हैं, अच्छा है, लेकिन चाहिए कि हम लोग उसको एक बार अपनी आंखों से निकाल लें, पढ़े भी जो अपने पास लीला में होनी चाहिए उसका जो है पढ़ना जरूर चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की एकादशी महान महोत्सव की ताए गौर विमान की।